ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में विजय है। और बाबा हमेशा चार प्रकार का निश्चय बताते हैं, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। लेकिन इन चारों प्रकार के निश्चय में सबसे आगे किस निश्चय को रखेंगे, पहला नंबर किसको देंगे? स्वयं में निश्चय, बाप में, ड्रामा में या परिवार में? पहले किस, कौन सा निश्चय बहुत जरूरी है? जी जी, बाप में निश्चय। जी, बाप में निश्चय सबसे पहले चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, हमारी पालना करने वाला कौन है। तो इसीलिए यह ईश्वरीय पढ़ाई है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये सबसे पहला निश्चय चाहिए। ईश्वरी हमें पढ़ा रहे, नहीं तो बाबा कहते हैं अगर ये निश्चय थोड़ा डामाडोल हुआ, पता नहीं इनको कहते हमको भगवान पढ़ाते हैं या नहीं, किसी का संग लगा वो कहेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कोई ईश्वर विश्वर वहां पढ़ाता नहीं है, ये तो ब्रह्मा ने, जिनको ये ब्रह्मा कहते हैं ये किसी गुरु से सीखा होगा। कई बातें करते हैं मनुष्य, लेकिन ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं तो ये जानता ही नहीं था, अगर मैं अकेला होता जिसने यह माना, मैं कोई गुरु से लिया होता ये ज्ञान, तो फिर और भी होते शिष्य, मैं अकेला थोड़ी। बाबा तो भक्ति में इतने लीन होते थे, इतनी जो और कुछ उस समय सुदबुद्धि नहीं होती थी, भक्ति इतनी करते थे, ज्ञान तो था ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा ये ईश्वरीय निश्चय बहुत जरूरी है, नहीं तो संग दोष में आकर के बुद्धि बदल देंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि ये तो ऐसे ही है, तो फिर बाबा कहते हैं वो आत्माएं भागंती हो जाती है। इसीलिए अगर ये मजबूत है कि ये भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमको हिला नहीं सकेगा। तो मुख्य आज बाबा ने इसी पर ही जोर दिया है, और समय का भी निश्चय चाहिए, ये समय कौन सा चल रहा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, ये इतना पक्का निश्चय चाहिए। और इस जब ये निश्चय होगा तो दुनिया बदल रही है, हम देवता बन रही है, सारे निश्चय आ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब भी निश्चय बाप में निश्चय है, उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहला है कि मुझे भगवान पढ़ा रहा है, तो मुरली से भी इतना प्यार होगा, बाबा की श्रीमत से भी इतना प्यार होगा, कुछ भी हो जाए श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें आज बाबा ने मुरली में सुनाई है। तो सुनते बाबा के महावाक्य आज 25/4/2024 है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है, और भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो भगवान ने जो ज्ञान दिया उसी का नाम गीता है। तो ये गीता एपिसोड है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बेड़ा यानी जीवन रूपी नाव हिलती रहेगी, परंतु वो निश्चय होगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है, ये भगवान का संग हमें मिला है इस संगम युग पर, तो सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा क्या हो जाएगा, विषय सागर में डूब जाएगा। केवल डूब जाएगा नहीं, विषय सागर में डूब जाएगा, क्योंकि फिर विषय विकारों में पड़ जाएंगे। हाँ, भगवान तो कोई पढ़ाता नहीं है, तो भगवान की श्रीमत पर चलना है वो भी भूल जाएंगे, तो विषय सागर में डूब जाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। जैसे स्वयं बाप पवित्र है, नॉलेजफुल है, हमें भी बनाने आए हैं, तो बाप के संग में ही रहना है। बहुत अंडरलाइन, बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवानोवाच। बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है, दुनिया में तो मालूम ही नहीं है कि वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, भगवान 5000 साल पहले माफिक फिर से राजयोग सिखा रहा है, तो दुनिया को तो मालूम ही नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए, लोगों से पूछो कि गीता का भगवान कब आया था, कब आया था, तो यही कहेंगे 5000 साल पहले हैं, तो कब आया था। तो भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वो गीता एपिसोड कब हुआ था, भगवान आया और राजाओं का राजा बनाया राजयोग सिखा करके, तो वो कब हुआ था, ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते, तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो, वो तो यही समझेंगे ना कि हाँ पांडवों को सिखाया, गीता का ज्ञान दिया तो पांडवों को राजा ही मिल गई, इंद्रप्रस्थ मिल गया, जो वो समझते हैं। लेकिन ये सत्यु की राजाई है जो संगम पर भगवान देते, बाबा कहते ये तो कोई नहीं जानते। तो वो गीता एपिसोड कब हुआ था ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं, तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कब, कब आप भगवान को आकर के गीता सुनानी चाहिए, कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उसमें सनातन धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश तो वो कब होता है, कलयुग अंत में ही होता है, तो संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर, भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है, ये पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष या जो भी पुरुषोत्तम के साथ जोड़ते हैं उनको पता नहीं, ये संगम युग की यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं कौन, लक्ष्मी नारायण है, बाबा हमेशा लक्ष्मी नारायण के ट्रांसलेट के आगे रिफर करते थे ये है। तो मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं हैं। मनुष्यों को देवता बनाना इस संगम युग पर ही होता है। हाँ, द्वापुर में थोड़ी बनाएंगे मनुष्य को देवता, वैसे तो बात और ही कलयुग आया तो क्या और ही नरकवासी बनाए क्या भगवान ने आके। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर, कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम है संगम युगी ब्राह्मण, ये पक्का पक्का याद करना है। बाबा में निश्चय होगा और बाबा हमें ब्राह्मण बना रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, तो ये भी निश्चय होगा कि हम ब्राह्मण हैं। लौकिक में ब्राह्मण कभी भूलता है क्या कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसको कहे नहीं नहीं तुम तो क्षत्रिय हो, नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ। हाँ, लौकिक वाले बहुत नशे से कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, कोई नहीं भूलता अपना कुल, परंतु यहां माया भुला देती है, ये भूल जाते हैं कि हम संगम युगी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तुम ब्राह्मण कुल है, तुम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हो, अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितना आर्ग्यू करते, बात मत पूछो, अरे भगवान ने कहा है ये काम और क्रोध नरक के द्वार है, गीता में है। चलो गीता को तो तुम मानते हो ना, तो ये भी तो जरूर मानो कि ये काम क्रोध नरक के द्वार है। तो बहुत आर्ग्यू करते हैं, पवित्र सब बन जाएंगे दुनिया कैसे चलेगी, ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे कैसे, ये आर्ग्यू करते हैं, बहुत डिबेट करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे आज बाबा कहते खजाना है, खजाना मिलता है ना तो लगता है कि अरे बड़ी प्राप्ति हो गई, तो ये काम विकार मनुष्यों के लिए एक खजाना है, ऐसे मनुष्य समझते हैं। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है, शादी कराते माता पिता और लाइसेंस मिल जाता है विकारी बनने का, लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है, बालक बनते हैं हाँ तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है, बेटा पैदा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ अब इसकी शादी करनी है, वर्षा तो बाद की बात है ना, वर्षा देंगे शादी करो तो वर्षा मिले, पर अगर शादी नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए पहला पहला बाप का वर्षा क्या मिलता है, विकार में जाना। शादी बर्बादी कराते हैं, और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। मन जीते जगत जीत की बात नहीं है, मन तो घोड़ा है वो तो चलेगा, लेकिन माया जीते काम विकार जीते जगत जीत जरूर बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे, महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है, ऐसे भी नहीं क्या कि सब फट से काम पर जीत पा लेते, माया ऐसी है तो चलो कर्म में नहीं लाएंगे लेकिन मनसा में छोड़ती नहीं है, आकर्षण शरीर का आकर्षण ये भी तो काम विकार का ही रूप है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है, मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं हाँ बाबा को जो लिखते हैं बच्चे कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, क्या खुशी से कहते हैं लिखते होंगे बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है ना, ये ऑर्डिनेंस है कि विषय वैतरणी नदी में मत गिरो, काम विकार में मत जाओ, और उसका उल्लंघन किया तो बाबा को लिखते हैं फिर, तो बाबा की जरूर ये ऑर्डिनेंस है ना कि ये मत करो। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, ऐसे नहीं क्या नहीं, ऐसे नहीं कि जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे, अब सत्युग में सब जगत जीत है तो थोड़ी जगत जीत बनकर के कोई विकार में जाएंगे, वहां तो सब पावन है। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो वो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम, यहाँ गृहस्थ आश्रम तो है सतयुग से चला आता है लेकिन कलयुग में है अपवित्र गृहस्थ आश्रम, बाबा ने समझाया है, पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, सतयुग में थे पवित्र गृहस्थ आश्रम के, अब 84 जन्म लेते लेते अब अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापन करते हैं नई दुनिया। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है, नाम ही है, दो अलग अलग राज्य है, नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो, ये लक्ष्मी नारायण है, दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे, अभी बाबा प्रभात फेरी की बात करते हैं, उस समय हाँ बाबा के दिनों में तो बहुत होती थी, सुबह सुबह कई बार 4 बजे उठकर भी सब आते थे, प्रभात फेरी निकालते थे, क्योंकि 4 बजे प्रभात होता था। लेकिन फिर देखा कि 4 बजे हम रास्ते पर चलते हैं, नारे लगाते हैं, लोग तो आते ही नहीं है क्योंकि वो सब सोए होते हैं, तो 4 बजे फिर बंद कर दिया। फिर 5 बजे शुरू किया, 5 बजे बजाना है, वो प्रभात फेरी निकालते थे, तो भी कोई कोई मुश्किल से उठते होंगे और आवाज देख करके बालकनी में आते होंगे, आंखें मसलते हुए, ये कौन आए। फिर देखा कि अभी भी लोग सोए हुए, तो फिर 6 बजे निकालना शुरू किया, क्योंकि लोग तो जागते कहाँ है इतना जल्दी, कोई कोई जागते होंगे भक्त लोग, बाकी तो सब सोए रहते हैं। तो बाबा कहते, तो बाबा देखो क्या कहते हैं, तो तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो, प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं इसलिए देरी से निकालते हैं। तो फिर 6 बजे निकालना शुरू किया। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो। अभी क्या है, वहां फिर उस समय प्रदर्शनी आदि तो कुछ होती नहीं थी, ये तो बाद में प्रदर्शनियां शुरू हुई, चलो कहीं होती भी होगी लेकिन सड़कों पर जाएं और लोगों को पता चले वो तो नहीं होता था, तो इसीलिए एग्जीबिशंस हुए। लेकिन पहले तो प्रभात फेरियों से ही बाबा का परिचय सबको देते थे। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो। चलो कहीं प्रदर्शनी लगाई भी, अब सेंटर तो बहुत दूर है और कहाँ किसी हॉल में लगा दी प्रदर्शनी, तो कहेंगे कि हम वहां कैसे जाएंगे, तो बहुत दूर है हमारे लिए, तो कहीं वहीं प्रदर्शनी लगाएं जहां सेंटर भी नजदीक हो। जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए और वो भी ट्रांसलाइट का। तो जब बाबा ने ये कहा ट्रांसलाइट का हो, हाँ प्रभात फेरी में ट्रांसलाइट का लक्ष्मी नारायण हो या एग्जीबिशन में भी हो। अब कई बार ट्रांसलाइट के लिए तो फिर बिजली चाहिए, तो फिर बिजली कहाँ से लाएंगे, तो कई बार छोटे जनरेटर लेकर भी वो रखते थे वो कैसे गाड़ी में, और फिर वो लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट जलाते थे और एग्जीबिशंस में भी ट्रांसलाइट का ही लक्ष्मी नारायण रखते थे। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने कहा कि अभी ऐसा टैबलो निकालो, तो टैबलो माना गाड़ी पर ऐसे टैबलो जिसमें आप प्रदर्शनी कर सको या जिसमें आप चित्र रख सको या ऐसे मॉडल्स रख सको। तो बाबा कहते हैं तो ट्रांसलाइट का होना चाहिए लक्ष्मी नारायण, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए, एक ये चित्र और दूसरा सीढ़ी का चित्र। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। तो 2-3 ट्रक हो जिसमें सजाया हुआ हो, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट हो, सीढ़ी का ट्रांसलाइट हो, तो दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। हाँ बच्चे गरीब भी आएंगे, साहूकार भी आएंगे, सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है, सब बाबा को मदद करते हैं तो शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है, भंडारी भी और भंडारा भी, हाँ भरपूर बाबा के बच्चे ही करते हैं ना, तो उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं पद्मा पदम पति, 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत के मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान कहते हैं और गारंटी से कहते हैं, तो गारंटी माना जरूर देंगे ना, ऐसे थोड़ी गारंटी कोई करता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी, मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे लिए, हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ, जैसे अभी क्या है, हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर है ही, पैदा हुआ बच्चा और वो वर्षे का अधिकारी बन गया, जैसे हथेली पर उनको वर्षा है, ये पैदा हुआ और वर्षे हथेली पर, तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर है ही है बच्चे को, जैसे पैदा हुआ। तो बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है, बच्चे के नाम पर विल कर देंगे। हाँ आजकल जरा सोचते हैं माता पिता कि हम बच्चे के नाम पर करेंगे, बेटे की शादी होगी तो ये बहू तो हमको ही निकाल देगी, ये तो हमारे नाम पर है, पूरा अधिकार रखेगी, और सास ससुर को ही निकाल देगी, इसलिए आजकल ये सब मुश्किल से करते हैं, क्योंकि डर रहता है ना कि बेटा तो माँ बाप को ही निकाल देगा, आजकल ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है, बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, बस बाबा के बने 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, पीढ़ी माना जवानी में नहीं मरेंगे, बचपन में नहीं मरेंगे, पूरी आयु होगी तब शरीर छोड़ेंगे, वो भी स्वेच्छा से, इसलिए बाबा कहते हैं तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं। काल का दो अर्थ होता है, एक तो समय को भी काल कहते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और दूसरा काल मृत्यु को भी कहते हैं, और यहाँ तो महाकाल, तो महाकाल माना भगवान हमको अपना बना लेते हैं, वो महाकाल हमको अपना बना लेते हैं, तो 21 जन्म हम अमर बन जाते हैं महाकाल के बनने से। तो बाबा कहते हैं हाँ, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं, महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, वो तो यमदूत आते हैं तो यमदूत समझते हैं, यमदूत आकर के हमको ले जाएगा, पर ये महाकाल शिव बाबा की पूजा क्यों होती है, ऐसे नहीं कि वो कोई मारने वाला है, ये महाकाल आकर हमको अमर बनाता है, इसीलिए महाकाल की इतनी पूजा होती है ना, उज्जैन में कितना बड़ा भी महाकालेश्वर का मंदिर है। तो महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है, समझते हैं भगवान ने यमदूत भेजा मंगा लिया, भगवान ने यमदूत भेजा और उस यमदूत उसको ले गया, मर गया तो माना यमदूत ले गया। अब ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई महाकाल आएगा, यमदूत भेजेगा और हमको ले जाएगा, मर जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, शिव को मानते हैं ना, पहाड़ों पर भी जाओ, जहाँ जाओ वहाँ शिव के मंदिर है, तो वो महाकाल को ही मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियां लगा देते हैं मंदिरों, जो पहाड़ों पर मंदिर बनते हैं ना, हमने कई जगह देखा, इतनी झंडियां लगाते हैं, बात मत पूछो, शहरों में तो लगा नहीं सकेंगे लेकिन पहाड़ों पर तो खूब लगाते हैं। तो महाकाल का मन के मंदिर भी है, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। किसका प्रचार करना चाहिए कि भगवान अब आया है, हाँ पहचानो। तो नारे लगाते थे, यही कहते थे, हाँ भगवान आया है, पहचानो पहचानो, ऐसे कहते थे। तो बाबा कहते उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि भी बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वो तो जल को ही अमृत समझ लेते हैं, गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान अमृत है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका नाम अमृत नहीं है, ये ज्ञान है ना, पर ज्ञान को अमृत से भेंट करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान अमर बनाने वाला है। तो समझते अमृत भी पीने से हम अमर बन जाएंगे। तो इसको अमृत नाम वास्तव में है नहीं, ज्ञान माना ज्ञान, कोई जल नहीं है जो पिलाएंगे और अमर बन जाएंगे। ये तो पढ़ाई है, ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। ये अमृत शब्द भी भक्ति मार्ग का नाम है, आशीर्वाद ये भी भक्ति मार्ग का नाम है। तो ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से भी ऊंच पद मिलता है। कोई भी पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ाई तो चाहिए ना, तो पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। सो भी मैं पढ़ाता हूँ, भगवान स्वयं पढ़ाए तो जरूर कितना ऊंच पद पाएंगे। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, भगवान आते हैं तो बड़े गुप्त रूप में आते हैं, कोई सजे सजाए रूप में थोड़ी आएंगे। तो भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, जो हाँ बिल्कुल साधारण रूप है। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं, खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। शिव बाबा आप समान बनाते हैं ब्रह्मा के थ्रू, ऐसे थोड़ी लक्ष्मी नारायण में प्रवेश होकर के या लक्ष्मी नारायण आप समान बनाएंगे, वो तो सतयुग में आते हैं, तो वो थोड़ी आप समान बनाएंगे। यहाँ भगवान हमको आप समान बनाते हैं, तब लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे, आत्मा पढ़ती है उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। इस संगम पर बाप जो नॉलेजफुल है वो आत्मा को पढ़ाते हैं और आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं, हाँ भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया, भगवान तो पढ़ा करके आप समान यहाँ बनाते, फिर सतयुग में भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसे थोड़ी भगवान बन जाएंगे, भले भगवान भगवती कहते हैं लक्ष्मी नारायण को, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान को तो कोई भगवती होती नहीं है, वो तो निराकार है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते, उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, अब वो कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़ी है जो पढ़ाएंगे, ये ज्ञान तो पतितों को मिले तब तो वो पावन बने। अब श्री कृष्ण क्यों पढ़ाएगा सतयुग में, कोई पतित थोड़ी है, सतयुग में पति थोड़े होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे माना उस रूप में नहीं देखेंगे, भले वही आत्मा 84 जन्म लेती है और वही अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है, लेकिन वो श्री कृष्ण का जो रूप है वो तो अभी नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है, हर एक पुनर्जन्म लेता है, लेकिन हर पुनर्जन्म में चेहरा अलग होता है। तो वो जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वो जो उस समय उनका चेहरा होगा, उनके 84 जन्मों में कोई ऐसे नहीं श्री कृष्ण का चेहरा फिर से उनको मिलेगा, अलग ही चेहरे मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है, सब अलग अलग शरीर मिलेंगे, अलग अलग चेहरा। कुदरत का ये ड्रामा है, कैसी कुदरत, एक आत्मा के 84 जन्मों के जो चेहरे हैं वो भी न मिले, और जितनी आत्माएं हैं, जितने वो जन्म लेते हैं, किसी का भी चित्र या चेहरा एक जन्म में ऐसे या दूसरे जन्म में न मिले हर एक का। देखो इसको ही बाबा कुदरत कहते हैं, कुदरत का ड्रामा है। कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही है। कोई कहे ना ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, बाबा कहते ये सब बना बनाया, कोई बनाता नहीं है, ये कुदरत है, ये बनी बनाई ड्रामा बना बनाया। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से, अभी जो तुम्हारा फीचर है, जो तुम्हारा चेहरा है, कैसी आंखें हैं, कैसा नाक है, कैसे होंठ है, या जो आपका शरीर है, ऐसे फीचर से इसी कपड़े में कल्प पहले तुम ही पड़ते आएंगे। अगले कल्प में 5000 साल के बाद इन्हीं वस्त्रों में यही चेहरा यहाँ ही बैठेंगे, यहाँ ही अभी मुस्कुराता होगा, तो कल्प पहले भी वैसे ही मुस्कुराया था, सब वही हूबहू रिपीट होता है। इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पड़ते आएंगे, हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है, वही लेती है, माना आत्मा ही शरीर दूसरा लेती है, जो कल्प पहले लिया था वही शरीर मिलेगा जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, जो कल्प पहले था वो ही फिर रिपीट होगा। इसलिए देखो कई बार बता चुके हैं, जब ये ओम शांति भवन बना ये तो पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था, और वो पहाड़ खरीद लिया, आप सोचो, और कितने में लिया उस समय, 1 square foot 1 रुपए में, 1 square foot, अभी तो 1 square foot कितना खर्चा होता, तो 1 rupee 1 square foot, लेकिन पहाड़ था। अब पहाड़ को तोड़ा, इतने डायनामाइट लगाए, इतने पत्थर इकट्ठे किए, फिर ये मकान बनाएंगे, तो देखो बाबा सब जानते हैं। तो हूबहू रिपीट होता है ना, आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, वो होता है, वो होती है हद की बातें। वो जो रील होता है फिल्म में, वो हूबहू वैसे ही रिपीट होता है। बाबा कहते पंछी उड़ा, फिर वापस अगले शो में फिर वही रिपीट होगा। वह होती ही है, वो होती हद की बातें, ये है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई न कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय, एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है ज्ञान सागर की, वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर, भल वो देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते ना। आत्मा सत्युग से त्रेता में आई, थोड़ी ताकत कम हुई, फिर द्वापर में आई, तो वही आत्मा फिर अपवित्र बनी। तो बाबा कहते हैं परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं देवी देवताएं पवित्र, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर सब की सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें हो नहीं, फिर ये बातें ही नहीं होती। अभी जो ज्ञान दे रहे हैं फिर सदगति में चले गए, फिर ये बातें सब नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो, औरों को सुनाते हो ज्ञान तो टीचर बने हो, मुख्य प्रिंसिपल तो वो है शिव बाबा। तुम आते भी उसके पास हो, मधुबन आते हैं उस प्रिंसिपल के पास आते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे कोई कहे हम शिव बाबा के पास आए हैं, अरे वो तो निराकार है, कैसे तुम आए हो, दिखाई तो देता नहीं, अरे वो तो निराकार है। हाँ वो आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है, उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। ये ब्रह्मा का रथ, हाँ रथ है, घोड़ा है, अश्व है, अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें एक दिखाते कि घोड़े स्वाहा किए, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। हाँ कोई घोड़े काट करके उनको पहले मारेंगे काटेंगे और फिर यज्ञ में डालेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम कैसे स्वाहा होते हैं, बाबा के बनते हैं, तो जैसे इस यज्ञ में स्वाहा हुए। तो दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान उवाच, मैं तब आता हूँ, कब आते हैं शिव भगवान, जब भारत में अति धर्म ग्लानी होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, हाँ ये भल कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते वो धर्म ग्लानी आखिर होती कब है। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं, नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है, एक तो ये नया झाड़ है, नए नए पत्ते निकलते हैं, फिर ये फाउंडेशन भी है, ये जड़ें हैं। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, जो और धर्म पिताएं आते हैं उनको धर्म स्थापन करने में मेहनत नहीं लगती है, वो तो ऊपर से आती रहती है आत्माएं। यहाँ तो जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है, और उन्हों की आत्माएं अभी क्या हो गई है, पतित हो गई है। तो जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे, अब ब्रह्मा बाबा अपना लौकिक जीवन की बात सुनाते हैं, गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए, हाँ बाबा दृष्टि देते हैं तो जैसे दृष्टि बाबा की मिलती, लगता कि हमारे जन्म जन्म के पाप कट गए, तो जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए, भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे दृष्टि कैसे देते थे, गीता के आगे जल रख करके बैठ पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं और वो जल पर दृष्टि रहती है, जल पर भी, क्योंकि ये अमृत बन रहा है, ये भी जैसे गीता सुन रहे है ना, तो वो जल भी गीता सुन रहा है और अमृत बन रहा है। तो भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पढ़ते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, पितरों को जल देते ना तो पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं, खास पितरों को याद करेंगे, जो आत्माएं गई हुई है उनको याद करते हैं, तो वो फिर अमृत बन जाता है, फिर वो जल चढ़ाते कि पितरों को मिल गया, वो अमर हो गए। तो बहुत कुछ भक्ति मार्ग में करते हैं, समझते पितरों का उद्धार होगा इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे बाबा, गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त थोड़ी था, कितना भारी भक्त था, बहुत भक्ति करते थे, कोई मंदिर ऐसा छोड़ा नहीं होगा जहाँ बाबा दर्शन करने नहीं गए होंगे, अमरनाथ भी गए थे, कितना कम मनुष्य जाते अमरनाथ, लेकिन बाबा सब जगह गए थे। अमरनाथ भी गए, तो बाबा कोई कम हाँ थोड़ी भक्त था, रामायण आदि सब पढ़ता था, बहुत खुशी होती थी। बड़े नशे से बाबा ये सब शास्त्र पढ़ता था। अब वो सब पास्ट हो गया, किसने पढ़े इतने सारे शास्त्र, सारे शास्त्र वेद ग्रंथ या उपनिषद पढ़े हैं? कोई है नहीं, किसको होगी, इतना समय भी कहाँ होगा। लेकिन बाबा ने पढ़े, क्योंकि बाबा को सत्यता की खोज थी। सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ये तो खोज खोज में बाबा ने शास्त्र पढ़ डाले। फिर खोज खोज में कितने गुरु कर दिए, फिर जब शिव बाबा मिला तो सारा ज्ञान उनको समझ में आ गया। तो बाबा कहते हैं रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। अब वो सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं। हमने भी बहुत कुछ किया होगा, आपने भी किया होगा, अभी बीती बातों को भूल जाओ, बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया ब्रह्मा बाबा को। स्थापना भी विनाश भी और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वो पक्का हो गया। फिर वो शास्त्रों की बातें बाबा भूल गए, क्योंकि ये बाबा को बाबा ने पक्का कर किया, क्योंकि शिव बाबा ने सब दिखाया बाबा को। ये सब खलास होना है ये पहले पता नहीं था, विनाश होना है ये पहले थोड़ी पता था, ये बाबा ने साक्षात्कार किया तब पता चला कि अरे ये तो सब विनाश होना। बाबा ने समझा ये सब होगा जब साक्षात्कार किया, देरी थोड़ी है, हाँ विनाश होने में देरी थोड़ी है। हम जाकर फिर हम फिर क्या हुआ समझा, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा, पगड़ी वाला राजा, पता नहीं उस समय मनोहर दादी बहुत सुनाती थी क्या क्या उनको साक्षात्कार हुए बाबा का, ये राजा बनूंगा, ये राजा बनूंगा, ये राजा बनूंगा। तो अलग अलग बाबा को जैसे अपने जन्मों का भी साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया। तो बाबा कहे हम जाकर फलाना राजा बनूंगा, पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे, हाँ ये बनूंगा वो बनूंगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, प्रवेशता हुई और ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया, इतना नशा जो कैसे सब कुछ जो शिव बाबा ने कहा विल कर दिया, सारी प्रॉपर्टी आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, नशा चढ़ गया ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं? हाँ जब भी किसी से पूछे ब्रह्मा विष्णु शंकर में तीनों में से बड़ा कौन, तो कई कहेंगे शंकर, महादेव है ना शंकर। लेकिन नहीं, बाबा ने उस दिन बताया था तीनों में से बड़ा है ब्रह्मा, क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो वही बनता है, विष्णु शंकर थोड़ी बनते हैं। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, तो तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते वो लोग, विष्णु का नाम लेते हैं, हाँ क्योंकि समझे विष्णु के अवतार है, जो भी 24 अवतार बताते वो विष्णु के अवतार बताते हैं। लेकिन शिव बाबा एक ही अवतार लेता है, वो भी ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान देता है, फिर आगे तो कोई और अवतार है ही नहीं शिव बाबा के। तो वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वो तो है देवता, वो कैसे पढ़ाएंगे? चलो विष्णु कोई पढ़ाए ऐसे भी तो नहीं है। बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो पालना और वो विनाश, विष्णु पालना और शंकर विनाश और ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवानो वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वो भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, ये अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है राज, विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है विश्व में शांति हो। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब बाकी शांति धाम में थे, हाँ, बाबा ने एक बार कहा था कि अभी जो झगड़ा करते ना, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन सबको मैं शांति धाम में बिठा देता हूँ। जाओ बैठो, तुम वहां घर में जाके बैठो, या सृष्टि पर लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो सृष्टि पर लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो शांति धाम में बिठा देता हूँ, और जो बिल्कुल शांत प्रिय है, योगी आत्माएं है, वो ही फिर सत्युक्तिता में आती है। लड़ाकू जो झगड़े वाले सबको घर में बिठा देते हैं। तो बाबा कहे, हाँ ये तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्री मत पर ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे, ये भी जानते हैं। कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा, वही आत्माएं ज्ञान में आएंगे। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे, आते रहेंगे ज्ञान में। जैसे तुम निकले हो, तुम जी निकले हो, ज्ञान में आए हो, तो और भी निकलते रहेंगे। वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी, जो अच्छा पढ़ते वो अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। क्या क्या होगा योग से, ज्ञान से? अच्छा, मीठे मीठे सिक्कीले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। वरदान, रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, ध्यान से सुनना, वरदान, रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक क्या करता है? माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। हम सब कौन है? खोए हुए आशिक थे, अब आशिक माशूक से मिल रहे हैं, तो माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया। हम रूहानी आशिक उस माशूक को समझकर जानकर फिर उन पर आकर्षित हो, उनको सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है, इस मोहब्बत की लकीर के अंदर ऐसी आशिक आत्माएं पहुंचती है, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, ये सब लहरें सदा के लिए रिफ्रेश करा देती है, रिफ्रेश हो जाते हैं। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। मधुबन में आते हैं ना आपस में भी, कितना मिलते हैं, कई सालों के बाद मधुबन में आके मिलते हैं, तो ये आशिक माशूक से तो मिलते हैं, लेकिन आशिक अपने आपस में भी तो एक दो से मिलते हैं। तो ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, ताकि आप आशिक माशूक से भी मिल सको। स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांतवासी के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। आज का अव्यक्त इशारा, आज 25 तारीख है। जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे ये संस्कार स्वाहा हो रहे हैं, संस्कार स्वाहा हो रहे हैं, ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को मालूम है कि कल वोटिंग डे है, 26